ذلك جزاء وعداء الله النار، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ. کون ہے اللہ کا دشمن؟ جو قرآن سے روکے. دیکھیں قرآن پڑھانے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، آپ کو بھی شاید نہ کبھی ملے، لیکن زندگی میں ایک خود سے وعدہ کر لیں، میں نے کبھی کسی کو قرآن سے روکنا نہیں ہے. بعض لوگ صرف تعصبات کی بنیاد پہ لوگوں کو فون کر کر کے قرآن کی کلاسوں سے روکتے ہیں، یہ آپ اپنا اور اللہ کا معاملہ بگاڑ رہے ہیں. چاہے کوئی وہاں جا کے صرف تجوید سیکھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو قرآن سے نہ روکے. اللہ کہتا ہے یہ ہے جزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ. کب تک؟ لہم فی خدار الخلدی، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. کیوں بھائی؟ وجہ کیا؟ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یعنی یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اب سمجھ آتا ہے نا کہ آیتوں کا انکار، آیتوں کی باتیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کر کے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں. ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں. یہاں میں آپ کو روک کے مختات کرنا چاہوں گی کہ یہ لفظ الَّذَيْنَا ہے، تثنیہ ہے، اونلی اسی جگہ پہ آتا ہے قرآن میں. پورے قرآن میں دو جگہ اس طرح سے لفظ آتے ہیں تثنیہ کے، الَّذَيْنَا ادھر ہے اور ایک جگہ آپ پڑھیں گے خالدین. خالدین اکثر آتا ہے، خالدین سورہ حشر میں آئے گا غالباً اگر میں بھول نہیں رہی. تو الَّذَيْن دو نے، الَّذَانِ الَّذَيْنِ، تو یہاں آپ الَّذِينَ نہ پڑھ لیں. جس نے نہیں پڑھا ہوا ترجمہ وہ تو اس کو الَّذِينَ ہی پڑھے گا نا. حافظوں کو اس پہ اتنی غلطی لگتی ہے کیونکہ ان کو مفہوم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا. تو یہاں مراد کیا ہے؟ الَّذَيْنَا. کافر کہیں گے اس دن اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں. کون دونوں؟ جن اور انسان بھی، اور اسی طرح انسان کو بہکانے والی دونوں قوتیں، یعنی جو بھی انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرے. ذرا اللہ ہمیں دکھا تو صحیح. کون لوگ؟ ادلانا، لام پہ جو زبر ہے یہ بہت اہم ہے. ادلانا کہیں گے تو مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. ادلانا، جن دونوں نے بہکایا ہم کو کہاں سے؟ کون تھے وہ لوگ؟ من الجنی والانسی، جو جنوں میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے. ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اللہ کے راستوں سے روکا، ان کو بلا، کتنا غصہ آ رہا ہے ان پہ کہ نج الحما، ہم روند ڈالیں ان دونوں کو، تحت اقدامینا، اپنے قدموں کے نیچے، تاکہ لیکونا، سارے تثنیہ کے سیگے، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین، پست لوگوں میں سے. کسی انسان کی وجہ سے آپ کا کاروبار ڈوب جائے، کتنا غصہ آتا ہے. کسی ایک عورت کی وجہ سے عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہو، کتنا غصہ آتا ہے. سوچئے ان لوگوں پہ کتنا غصہ آئے گا جن کی وجہ سے جنت چھٹ گئی. کسی کی وجہ سے آپ کی فلائٹ ہی مس ہو جائے، مہمان آ جائے گھر میں، وقت پہ کوئی کام نہ ہو، پیکنگ نہیں کی، پاسپورٹ نہیں مل رہا، ٹریفک ہے، راستے میں بیٹے نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلطی کر لی، روڈ غلط لے لی، انسان مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. بڑے بڑے با اخلاق لوگ اس وقت صبر نہیں کر پاتے، اور کچھ نہ کریں تو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا اس بندے کا سوچئے کہ جس کی جنت مس ہو گئی. لوگ کہتے ہیں فلائٹ مس ہو گئی، میں کہتی ہوں اگر جنت کی فلائٹ مس ہو جائے تو کیا حال ہوگا. اس دن انسان تڑپ تڑپ کے پکارے گا ایسے لوگوں کو کہ اللہ وہ لیڈر کدھر ہیں، وہ قائد، وہ پیشوا، وہ فریب دینے والے، دھوکے دینے والے، وہ شیطانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے لیڈر کدھر ہیں آج؟ بلا اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے، ان کو مسل کے رکھ دیں. انہوں نے ہمیں لوریاں سنائیں، انہوں نے جھوٹے وعدے دلائے، انہوں نے کہا تھا کہ غلط ہے. اس کی نسبت کس پہ جا رہی ہے پچھلی آیتوں پہ اگر آپ غور کریں تو؟ پہلی آیت فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں، او اللہ نے مولویوں کو پکڑنا ہے، تمہیں تھوڑی پکڑنا ہے، یہ جو دنیا میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ایسے لوریاں دینے والے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں خوش کرتے رہو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، ہماری قبروں پہ آ کے تم میلے ٹھیلے لگاتے رہنا، ہم تمہیں بچا لیں گے. کل انسان چاہے گا کہ کاش ایسے لوگ میرے سامنے ہوں، میں ان کو پکڑ کے مسل کے رکھ دوں. اللہم لا تجعلنا منہم، جس کے پیچھے چلتے ہیں سوچ کے چلیے. अब तो आपको आदत हो गई है बहुत दिन से हमारे पीछे भी चलते हुए, फिर मैं कहती हूँ कि आप एक बार फिर सोच के आइए हमारी क्लासेस में। हम सब साथियों पे कोई यकीन ना करें, अपने दिल से पूछें, रब से पूछें कि अल्लाह जिनके साथ लगे हुए ये किससे जुड़ रहे हैं, किसी इंसान की मोहब्बत दे रहे हैं, किसी ग्रोह की मोहब्बत दे रहे हैं, किसी मसलक के बना रहे हैं, या अल्लाह तुझसे जोड़ रहे हैं। आपका दिल आपको गवाही दे देगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने बहका दिया तो कल क्यामत के दिन, चाहे दुनिया में आपने उसके नाम के साथ चार चार लकब लगाए हों, बाज़ लोगों के तो नाम संभाले ही नहीं जाते, छः सात लकब के बाद कहीं उनका नाम आता है, कहीं आली हजरत, कहीं शेख, कहीं फुलां फुलां, फिर अंदर से एक छोटा सा नाम निकलता है। कल क्यामत के दिन वो कहेंगे सबसे नीचा करें, इंसान अपनी ज़ात का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन इसके बरक्स, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो सआदतमंद जिन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस कौल पर पुख्तगी से कायम रहे, क्या होगा इनके साथ? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उतरते हैं इन पर फरिश्ते और इनको कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, ना डरो और ना गम करो, और वअबशिरू, तुम्हें बशारत हो, खुशखबरी हो, बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तूअदून, उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता था। कौन देता था ये नहीं पता, तूअदून मजहूल, तुम दिए जाते थे अल्लाह की तरफ से, अंबिया कराम की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह ने अपनी किताबों की तरफ से तुम्हें ये पैगाम दे दिया था उस जन्नत का कि वो ईदल मुत्तकून। और क्या कहते हैं फरिश्ते, नहनु औलिया उकुम फिल हयात दुनिया, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी, व फिल आखिरा, और आखरत में भी होंगे। दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखरत में भी तुम्हारे दोस्त होंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहेगा, और इससे भी बढ़ के वलकुम फीहा मा तद्दउन, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तुम मांगोगे। इतनी मेहरबानियाँ किसकी तरफ से हो रही हैं, ये इतना कुछ कौन हमारे लिए ऑर्डर कर रहा है? फरमाया नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये मेज़बानी है बहुत बख्शने वाले, हमेशा रहम फरमाने वाले की तरफ से। क्यों उसने तुम्हारी ये कदर की? इसलिए कि तुम उसी की तरफ तो लोगों को बुलाते थे, इसीलिए ऐसे लोगों की तारीफ़ कर दी कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, और उस शख्स से बेहतर कलाम किसका होगा, किसका नुतक किससे प्यारा होगा, जिसने दावत दी तो अल्लाह की तरफ, और नेक अमल किए और अपनी नस्बत जोड़ी तो वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहा तो ये कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा यही तारुफ बहुत है, मैं तो अल्लाह के फरमा बरदारों में से हूँ। ये तो थी उनकी दावत, लेकिन जब इतनी खरी दावत के नतीजे में उनके ऊपर हमले होते थे, प्रोपेगंडे थे, लोग उनकी बुराइयां करते थे, तो उनका रद्द अमल क्या था? रद्द अमल बाद में बताया, पहले उसका नतीजा बता दिया कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, नहीं यकसा होती नेकी और बुराई, यानी किसी को नेकी की दावत देना और बुराई की दावत देना ये बराबर नहीं होता। नेकी फूल है तो बुराई जो है ये कांटा है। जब लोग तुमसे सच्चे दीन पे आने और जम जाने की वजह से रुख फेरें, लड़ने लगें, झगड़ने लगें, गालियाँ दें, नाराज़ हों, धमकियाँ दें तलाक की, या तुम्हें घर छोड़ के चली जाऊँगी तुम्हारा, तुम बड़े मौलवी बन गए, तो क्या करो? इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई का तदारुक उस नेकी से करो जो अहसन है, बेहतर रवैया अख्तियार करो। होगा क्या इससे? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहू अदावह, पस नागहां वो शख्स तेरे दरमियान और उसके दरमियान अदावत है, यूं बन जाएगा कान्नहू वलीयुन हमीम, गोया कि वो तुम्हारा जानी दोस्त है। किल विद काइंडनेस, दीन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात, लगने वाली पाबंदियों से बचने का खूबसूरत नुस्खा इदफा बिल्लती ही अहसन है। बड़ा मुश्किल, इसलिए वमा युलक्काहा, और नहीं तौफीक दी जाती इन खूबियों की। हाँ से मुराद ये पीछे वाली बातें, यानी इस रवैये की, इन पसंदीदा खसाइस की तौफीक नहीं दी जाती मगर इल्लल्लज़ीन सबरू, सिवाय उन लोगों के, या सिर्फ उन लोगों को जो सब्र करते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं तौफीक दी जाती इसकी मगर बड़े खुश नसीब लोगों को। यानी ये आला अखलाक दीन के साथ सिर्फ सब्र वालों और बड़े नसीब वालों का होता है। हम कहते हैं लो झूठे थे इसलिए बोले ही नहीं, थे झूठे, पता नहीं था ना इसलिए नहीं जवाब दिया, नहीं था पता जी, कर लो जो करना है। बड़ा नसीब होता है जो अल्लाह के मामलात पे सब्र कर लेता है। अब एक रुकावट है इसके रास्ते की, इतना आला अखलाक पैदा कैसे करें, यहाँ क्लासरूम में बैठ के करना और कराना बड़ा आसान है, जब प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो ज़ुबान फिसलने लगती है, तो जब दिल में वसवसे आए तो क्या किया जाए कि बुराई के जवाब में भलाई करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं किसी से दबती हूँ, मैं डरती हूँ। तो कहा वह इम यन्ज़ग़न्नक मिन शैतानी नज़्गुन, और ऐ सुनने वाले अगर शैतान की तरफ से तेरे दिल में कोई वसवसा पैदा हो। पीछे हम नज़्गुन को बड़ा अच्छी तरह देख चुके हैं सूरत मोमिनून में, गुदगुदी करने को कहते हैं, यानी शैतान तुम्हारे अंदर गुदगुदी करे, तुम्हें जिसको कहते हैं कि क्रेव पैदा हो कि लो मैं क्यों चुप रहूँ, तो क्या करो, फस्ताइज़ बिल्ला, बस अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की मदद में आ जाओ। क्यों? इसलिए कि इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। और अगली आयत में फिर इसी सुनने और जानने वाले की कुदरतों का तذکرہ है। ये हैं वो चंद आयत जो उस माहौल में नाजिल हुई जहाँ ना अभी नमाज थी फ़र्ज़, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात और ना पर्दा, और ना सूद और ना शराब। मक्की माहौल है, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दीन की कीमत गालियाँ, कांटे, पत्थर। ऐसे वक्तों में कहा जा रहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्म इस्तक़ामू, अल्लाह तारीफ़ फरमाते हैं उन लोगों की जिन्होंने इत्तफाकन अपने रब को अपना रब नहीं कहा, ऐसे ही आदतन नहीं कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनके दिल की पुकार है कि रब्बी अल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को रब कह देते हैं, और रब लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का वो लफ्ज़ है कि रा बा बा से 1,000 लफ्ज़ इस एक मादे से कुरान पाक में आए हैं। कहीं रब्बा, कहीं यो रब्बी, कहीं तरबिया। सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रब क्या होता है, किसको कहते हैं? अगर एक छोटे से बच्चे से आप सोच शुरू करके देखें तो बच्चा दुनिया में जब नहीं होता तो उसकी नश्वो नुमा उसके माँ के पेट में हो रही होती है। उस बच्चे को शऊर तो नहीं होता, लेकिन दुनिया में आने के बाद बच्चे से पूछें तुम्हारी तरबियत कौन कर रहा है, कहेगा मेरी माँ, मेरा बाप, अम्मी और अब्बू, क्योंकि रब तो दिखता नहीं है। फिर वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको एहसास होता है कि अम्मी अब्बू के साथ और भी लोग हैं कि जो मेरी मदद करते हैं, फिर थोड़ा सा रुख बढ़ता है। इसीलिए माँ बाप की दुआ के लिए कहा गया ना कि दुआ मांगा करो कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वही लफ्ज़ है यहाँ रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे उस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। फिर होता क्या कि इंसान थोड़ा बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको लगता है कि मेरी मदद कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑक्सीजन को जानने लगता है कि हवा में ऑक्सीजन है इससे मैं ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, दूध पीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। इंसान का जो शऊर है ना वो कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरतों पे जुड़ जाता है। वो कहता है मुझे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पानी के बगैर मैं नहीं जी सकता, गोश्त नहीं खाऊंगा, प्रोटीन की कमी होगी, तो वो इन चीज़ों को फिर अपना रब समझने लगता है। बस यहाँ पे आके काफिर की ग्रोथ रुक जाती है, वो इन्हीं चीज़ों को मादा में खो जाता है। लेकिन मोमिन इससे ऊपर जाके कहते नहीं, रब कौन है? रब्बुनल्लाह। अल्लाह तक पहुँचने की तौफीक मोमिन को होती है। वो कहता नहीं ऑक्सीजन बनाने वाला मेरा रब है, पानी देने वाला मेरा रब है, सूरज चांद सितारों का निज़ाम चलाने वाला मेरा रब है, ऐसा रब है मेरा जिसको हकीकत में मैं नाराज़ नहीं कर सकता। कह दिया, देखिए रब को रब कहना पहली बात है, रब को रब कह कर इसका इजहार करना दूसरी बात है, और रब को रब कह कर उसका इजहार करके उस पे जम जाना ये आखिरी बात है। इसको इस्तकामत फिद्दीन कहते हैं। वो बुनियादी नुतका जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक बुनियादी चीज़ होती है ना जिससे सब कुछ उभरता है, ये है वो जुमला जो आपसे नमाज़ें पढ़ाएगा, ये है वो रोज़ा जो आपसे इताअत करवाएगा, फरमाबरदारी कराएगा, दीन के रास्ते में कुर्बानियाँ दिलवाएगा, फजर पे उठाएगा, 4-6 घंटे कुरान के लिए बिठाएगा। सारी ज़िंदगी अगर आप अल्लाह की तरफ आएंगे तो उसके पीछे बात क्या है कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। इसके अलावा अगर आपने मुआशरे को अपना रब बना लिया भटक जाएंगे, आपने सोसाइटी को, ख़ानदान को, बिरादरी को अगर अपना रब समझा, शौहर को नाराज़ किया तो तलाक दे देंगे, ख़ानदान को नाराज़ किया तो बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, तो याद रखिए कि आपका फोकस बदल गया। महवर बदल जाता है ना तो रास्ते बदल जाते हैं। हम इस वक्त सिर्फ मकासद की जंग जीत रहे हैं। दो बड़े मकसद होते हैं दुनिया में लोगों के, एक हक और एक बातिल। हक को अपना मकसद बनाने वाले कहते हैं रब्बुनल्लाह। ना उनको इमाम की ज़रूरत होती है कि इमाम होना, ना उनको किसी अपने लीडर की ज़रूरत होती है। जिसने रब को एक बनाया वो जम गया, और सहाबा कराम, तबा ताबईन और असलाफ के जमने की यही वजह थी कि उनकी तान टूटती थी तो इस पे टूटती थी कि वह नहनु लहू मुस्लिमून वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब हम सोचते हैं जब दीन की बात फिर इस्तकामत की बात तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारा ख्याल है कि इसके बाद नमाज़ें पढ़नी पड़ती हैं फिर इस्तकामत है। तो देखिए वो इस्तकामत फिल आमाल है। थोड़ी सी बात करूँगी इस्तकामत पे क्योंकि कुरान पाक का ये बेहतरीन मुकाम है। पहले इस आयत की कुछ तफसीर जो हमारे असलाफ से मिलती हैं वो पहले फ़र्ज़ है हमारा कि वही लें, क्योंकि कुरान की तफसीर पहले कुरान से और फिर हदीस से और फिर सहाबा कराम के अकवाल से। तो तौहीद पर इस्तकामत की तारीफ़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो क्या है। हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोगों ने अल्लाह को अपना रब कहा मगर इनमें से अक्सर काफिर हो गए। साबित कदम वो है, बस आप ये लिख लीजिए, आप छोटे छोटे जुमले हैं ये नोट कर लीजिएगा, साबित कदम वो शख्स है जो मरते दम तक इसी अकीदे पर जमा रहा। बड़ी कड़ी तलवार है ये चीज़, तड़पाती थी अबू बकर और उमर को भी कि आखिरी वक्त क्या कर रहे होंगे। मरते दम तक किसी अकीदे पे रहना, ये नेसाई इब्ने हातिम और इब्ने जरीर की रिवायत है। अल्लाह के नबी के बाद जो मुकाम है वो अबू बकर सिद्दीक है। वो इस आयत की तशरीह में लिखते हैं इस्तकामत पे कौन है। लोगों ने पूछा कि इसका क्या मतलब है सुम्म इस्तकामू, तो कहते हैं लम यज़निबू, कि इस्तकामत का मतलब ये है कि फिर इनसे गुनाह ना हुआ हो। उन्होंने फरमाया ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप ही फरमाइए क्या करें। तो कहा कि अल्लाह को अपना रब मानने के बाद इस पर इस्तकामत का मतलब ये है कि फिर इसके सिवा किसी की पूजा ना की जाए। ये थे अबू बकर, यानी वो इसमें गुनाह को भी ले आते हैं कि अल्लाह को एक बनाए तो गुनाह करेंगे, बॉस की नाफरमानी कोई ना कर सके, पुलिसमैन की ना करे तो अल्लाह की कैसे करे। तो पता चला कि अकीदे का असर बंदे के आमाल पे आता है और वो गुनाहों से रुकता है। तीसरा कॉल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का, मिंबर पर ये आयत तिलावत की और फरमाया खुदा की कसम इस्तकामत इख्तियार करने वाले वो हैं जो अल्लाह की इताअत पर मजबूती के साथ जम गए, लूमड़ियों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर ना फिरे। कौन होता है ऐसे? मुनाफिक। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई पढ़ चुके हैं आप लोग सूरत निसा में। मज़बज़बी न बई न सालिका, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, करें क्या क्या ना करें, जिधर जाते हैं उधर से ही डांट खाते हैं। चलिए उसके बाद अगला कॉल है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का, कहते हैं इस्तकामत ये है कि अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। तफसीर कुशाफ की ये रिवायत है, यानी उनके अमल सिर्फ सिर्फ अल्लाह के लिए होते, किसी इंसान की खुशी या नाराज़गी के लिए नहीं होते। हज़रत अली क्या कहते हैं इसके बारे में, अल्लाह के आयत करदा फ़राइज फरमा बरदारी के साथ अदा करते रहे, यानी फ़राइज़ का पाबंद। ये भी तफसीर कशाफ की रिवायत है। क्या पता चला कि इस्तकामत पहले अकीदे पे होती है, ये सबसे मुश्किल होती है। आम हालात में अल्लाह को एक बना के उस पर जम जाना ये बहुत आसान होता है, सभी जमते हैं, लेकिन अल्लाह को उस वक़्त भी अल्लाह कहना जब वो कोई गम दे दे, कोई दुख दे दे, या शरीयत का कोई ऐसा हुक्म दे दे जो बज़ाहर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उसको मानना, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला को रब कह देना, ये है असल में इंसान की आजमाइश। बहुत सारे लोग अल्लाह को एक समझते हैं, फिर उससे थोड़े कम सेकंड लेवल पे आइए उसका इजहार करते हैं, और उससे बहुत ही थोड़े उस पर जमे रहते हैं। मैंने बहुत साल पहले एक आलिम हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब, आज से शायद 15 साल 20 कुछ काफ़ी अरसा पहले उनकी मतलब शहादत कह लें, अल्लाह को पता है, लेकिन ज़ाहिर शहीद ही हुए थे, स्पीच करते हुए बॉम्ब ब्लास्ट में हलाक हुए। तो उनका मैंने इस पर एक दर्स सुना था, कहीं अभी भी पुरानी कैस्टों में रखूँगा, उनकी आवाज़ में जो फर्मनेस होती थी ना, जोश के, ये लफ्ज़ कि अल्लाह को एक मानना एक बात है, फिर उसका इजहार करना दूसरी बात है। बात लोग एक तो मानते हैं, इजहार नहीं करते, कि हम क्यों मशहूर हों नेकियों के नाम पे, लेकिन उस पे जम जाना ये है असल दर्जा। हम खुशियों में अल्लाह के नाम पे जम नहीं पाते, हमारे सामने ख़ानदान आते हैं हम ढह जाते हैं, हमारे सामने दुनिया का कोई मुफाद आता है हम इस्तकामत की कुर्सी से गिर जाते हैं, हमारे सामने दुनिया का कोई गम आता है हम गिर जाते हैं, कोई कुर्बानियों का वक्त आता है तो गिर जाते हैं। ज़रा सी दीन के मामले में 19-20 इधर उधर हो जाए ना तो हम चिढ़ने लगते हैं, हमने पता नहीं क्यों दीन को कामयाबियों के साथ जोड़ दिया, ये भी माबूद बन गया। तब तक खुश हैं आपके साथ जब तक आपके साथ कामयाब हैं, और आपकी वजह से कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, आपकी वजह से हमें मुश्किलात आई, हम सोच के आएंगे। जो लोग अल्लाह को ये जुमला कह देते हैं ना वो इस्तकामत के दर्जे से गिरते हैं। देखिए कि आप फर्नीचर ख़रीदते हैं, कैसा ख़रीदते हैं? आज तो वैसे लोग वही ख़रीदते हैं जो खूबसूरत लगे, पहले दौर में लोग ऐसे नहीं ख़रीदते थे, शायद लोग दूसरे शहरों में जाते थे कहीं चिन्नीओट और कहाँ पे मज़बूत फर्नीचर लाना है, जहेज़ का फर्नीचर है, कुर्सी टूट गई तो पता नहीं सास बातें करेगी, पहले लोग मज़बूत चीज़ ढूंढते थे। आज भी आप देखिए पायदारी की तो बात है ना, ब्रांडेड चीज़ों का जो एक शोशा है उसके पीछे बात क्या है, कहते नहीं ये फिर ख़राब नहीं होती, बहुत देर चलती हैं, हालांकि झूठ है, पहले ही दिन वो कपड़ा आप पहने तो उसको इतनी सलवटें पड़ जाएंगी। मजबूती की कीमत है, बंदे मोमिन की कीमत उसकी इस्तकामत पे है। और अगर ऐसे वक्त पे आप देखें उन लोगों को कि जो मक्का की गलियों में लिटाए जाते थे और अहद अहद की पुकार थी, हज़रत बिलाल थे अल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू में, कि जिनकी चर्बी पिघल पिघल के उस आग को बुझा देती थी लेकिन वो वहाँ से पीछे ना हटे। अगर सारी बातें जितनी भी हमने जमा की हैं इनको जमा करके हज़रत उमर फ़ारूक की एक तारीफ़ जो इस्तकामत की उन्होंने की उसको देख लें तो क्या है, कहते हैं कि इस्तकामत ये है कि तुम अल्लाह के तमाम अहकाम यानी जो हुक्म दिए, अवामिर यानी अमर डूस और नवाही यानी डोंट्स, इन पर सीधे जमे रहो, इससे इधर उधर रह फरार लूमड़ियों की तरह ना निकलो, ये है इस्तकामत। तो पता चल गया कि अल्लाह को एक मानने में इस्तकामत, कि अल्लाह के सिवा दूसरा नहीं, दुख मिले सुख मिले अल्लाह तू ही तू, कोई बकरे वाला कोई हिजर वाला कोई कब्र वाला मैंने नहीं मांगना। देखिए दुखों में कहते हैं ईमान चला जाता है, बच्चा बीमार है फलां कब्र पे ले जाओ, फिर क्या होगा, ठीक हो जाएगा, तो कब्र वालों ने हमेशा ठीक रहना, ठीक है। हमेशा याद रखे शैतान हमें दुखों में बहुत ट्रैप करता है, जब हम किसी सदमे में होते हैं ना दुख में, तो हमसे शिर्क अकबर करवाता है, कब्रों पे, बुतों पे, गैरों के नाम पे, और गैर शरई काम करवाता है कि किसी तरह ये दुख बीमारी टल जाए। और खुशियों में शैतान हमसे क्या कराता है, फिस्क करवाता है, फिर फासिक बनाता है, फिर कहते हैं ज़रा आज का दिन ऐश कर लेते हैं, फिर ये शादियाँ रोज़ थोड़ी आनी है, ये घर बना है आप ज़रा देखें, और जिसम अल्लाह ने दिया ज़रा इसको दिखाते हैं, या इंसान को शैतान जो है वो मुशरिक बना देता है या फासिक बना देता है, दोनों ख़तरे की अलामतें हैं। अल्लाह को वो अच्छा लगता है जो हर हाल में अल्लाह का, जो हर वक्त अल्लाह की तरफ रहते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह फिर देता क्या है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइक, उन पर फिर फरिश्ते उतरते हैं, कहाँ उतरते हैं और कहाँ से उतरते हैं, कभी आपने देखा इन फरिश्तों को, अब देखिए कि ये फरिश्तों का नज़ूल बाज़ कहते हैं कहाँ कहाँ है। मैं कहती हूँ कि ये दुनिया में भी है, ये मौत के वक्त भी है, ये कब्र में भी है और हशर में है, और चारों के दलाइल मौजूद हैं। दुनिया में बहुत बड़े गम की खबर सुन के दिल पे एक तस्कीन की हालत आती है अगर, तो ये ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हम सोचते हैं ना कि फरिश्तों का नज़ूल सिर्फ अंबिया कराम के लिए है, नहीं, वो फरिश्ते तो वही लेकर आते हैं ना, लेकिन हम में से हर एक के पास 10 फरिश्ते तो वैसे भी हैं। ये वो तस्कीन है जो बंदे मोमिन को मुश्किलात के वक्त में फरिश्तों की तरफ से आती है। आप देखिए कि जब एक बंदा अल्लाह को एक कहता है ना, तो उसके साथ ही एक दूसरी चीज़ लाजिम है, और वो है आजमाइश। आजमाइश के बगैर ईमान का दावा ही झूठा है। ईमान ठुकता ही नहीं है दिल में जब तक आजमाइशों के हथौड़े ना पड़े। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, आपने किसी दीवार में कील लगाना है, आपने कील भी लिया, दीवार की वो जगह भी नोट कर ली, और आप वहाँ वो कील रख के 1 साल खड़े रहे ना, प्यार से, नरम से, तरीके से उसको मोले, वो कील उसके अंदर नहीं जाएगा। क्या करना पड़ता है? ठक 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 हथौड़े बरसते हैं ना, फिर वो कील दीवार में जाता है। इसी तरह ईमान के दावे के बाद आजमाइशों के हथौड़े पड़ते हैं ना, तो ईमान अंदर आता है। जिसने ईमान का दावा किया वो आजमाइश के लिए तैयार हो, और अगर दावा ईमान के बाद आजमाइशें नहीं आती ना, तो समझें कि ईमान अभी सतही है। जैसे आप देखिए ना कि आपने इस शीट रॉक में अगर कील लगाना, हो सकता है आप थंब पिन से भी लगा लें क्योंकि ये नरम सी है, लेकिन अगर आपने कंक्रीट की दीवार में कील लगाना है ना, तो हथौड़े आएंगे। आप लगा लें कि ये जो दीवार है ना, ये कच्चे पक्के लोगों की है, अल्लाह करे कि ये बच के निकल जाए, लेकिन जिनको अल्लाह ने अपने काम में लगाना है ना, उनको ठोकता है। दीन की तरफ आना और दीन की आजमाइशों में बंदे का हाल क्या होता है, ये अब इंजॉय करें आप इस आयत में कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्ला तखाफ़ु वला तहज़नु वाबशिरु। तीन बातें हैं, खौफ से दूर, कोई फियर नहीं है, फियर फ्री लाइफ, ला तहज़नु टेंशन फ्री लाइफ, और अब शुरू बिल जन्नत इल्लती, जन्नत की खुशखबरियाँ। इस्तकामत का हिडन पहलू के ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बड़े से बड़ी मुश्किल मोमिन पे आ जाए ना, उसके दिल पे कोई तसल्लियाँ दे रहा होता है, कोई लम्हा सोचे गम का, दुख का, सदमे का, जो अल्लाह की पहचान होने के बाद आपके ऊपर आया, अंदर उस वक़्त ऐसे ठंडी ठंडी ओस बरसती है ना, वो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका होती है। बंदा मोमिन गमों में कभी डिप्रेस नहीं होता। गम तो होता है, आंख भी रोती है, अंदेशे भी आते हैं, लेकिन वो कैफियत नहीं होती जो उससे पहले होती है। ईमान का मक्खन होता है, जैसे आप लस्सी को बलोरते हैं, बलोते हैं तो फिर उसमें से मक्खन निकलता है ना, वो क्या है? सुकून, इत्मीनान। आपको अल्लाह को कहने के बाद क्या अपने अंदर चेंज दिखनी चाहिए? सुकून। ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यही सूरह यूनुस में पढ़ा, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोमिन जो होता है ना, वो बाहर से ठुकराया जा रहा होता है, मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, लोग उससे मुंह फेर रहे हैं, डांट रहे हैं, धमक रहे हैं, और अंदर के नहनु औलिया उकुम फिल हयात दुनिया वल आखिरा। जिसको फरिश्तों की दोस्ती मिल जाए उसको क्या करना है और दूसरी चीज़ों को। साहबे कराम खुश कपियों में मसरूफ होते थे, खाते पीते, कभी खरबूजे के छिलके एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इतने में अल्लाह का कोई हुक्म आता था तो लोहे की दीवार बन जाते थे। प्यार की बातें थी, कोई नाफरमानी की बात करता हूँ उनका चेहरा लाल हो जाता। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के पास होते, खुशी मजाक, घर में जैसे लैयर मूड होता है, इतने में हैया अल सलाह, हैया अल फलाह उठ के चले जाते थे। ये इम्तिजाज है मोमिन का। अल्लाह सुबहान तआला इसी बात को कहते हैं कि मोमिन के दिल पे बड़ी तसल्लियाँ होती हैं। आप अपने आप को पूछें, कोई नहीं इसका आपको जवाब दे सकता, ये आपको खुद ही देना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर इत्मीनान और खुशी आ रही है, क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि अल्लाह की ज़ात के साथ अब आपकी पहचान हो रही है। इस्तकामत वाला ईमान कोई आम नहीं होता, क्योंकि इस्तकामत है ना, इसमें सीधे होने का मानी भी आता है स्ट्रेट, और जमा हुआ होना भी आता है फिक्स्ड, यानी स्ट्रेट एंड फिक्स्ड, जम के खड़े हो जाओ फिर हिलना नहीं है। ऐसा ईमान जिसके बाद ना बंदा ढीला ढाला रहे, ना हर वक्त कॉम्प्रोमाइज। फैसला कर जो लिया तो जाऊंगे। देखिए, एक लड़की शादी होके ससुराल में जाती है, शादी के बाद भी सोचती रहे मैंने इधर रहना कि नहीं रहना, क्या करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता, रहूं नहीं, चलती हूँ जाती हूँ। पिछली मोहब्बतें कायम होती हैं ना, और ख़ास तौर पे कोई गुनाह की मोहब्बत हो तो लड़कियों के दिल नहीं लगते। वो लड़की जो सारे बंद टूटे हुए छोड़ के आती है ना, कैसे भी हालात मिले वो कंप्रोमाइज़ करती है। अल्लाह की तरफ आने वाला पिछले सारे सहारे तोड़ के आता है। वमै युमिन बिल्लाही व यकफुर बित्तागूत, पहले यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्ला, पहले अल्लाह की तलवार, इल्लल्लाह फिर है उसके बाद। तो जब दूसरों के सहारे तोड़ते हैं ना, फिर फ़ायदा होता है। हज़रत उस्मान कहा करते थे सुमस्तकामू के बाद कि अखलसुल अमल, इन लोगों ने खालिस कर लिया अपने अमल रियाकारी से और दिखावे से। वो दूसरों को दिखाने के लिए काम नहीं करते, वो करते हैं जो अल्लाह चाहते हैं। हज़रत सुफियान थे तो उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा, मुझे बस एक छोटी सी नसीहत कर दें, उसके बाद मैं आपसे कुछ ना पूछूं और जन्नत में चला जाऊं। देखिए कितने कम बोलने वाले लोग होते थे, कहते थे बिल्कुल छोटी सी बात, इसके बाद कुछ ना बोलूं। तो आपने कहा कि बोलो रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकीम, ये कह दो कि मेरा रब अल्लाह है, और उसके बाद फिर कुछ ना बोलो। आमंतु बिल्लाही सुम्मा इस्तकीम। तो ये है एक बंदे का इम्तिहान, इसको आप जितना मर्जी आगे पीछे ले लें। पीछे बात हुई थी बुराई के ऊपर साथियों के ज़माने की, बुरी महफिलों का जो नेकियों से रोकते थे, यहाँ नेकियों की रग़बत दिलाने वाले दोस्तों की बात है। एक लफ्ज़ होता है तनज़्ज़ुल, और यहाँ है ततनज़्ज़ुल, फ़र्क भी नोट कर लीजिएगा। तनज़्ज़ुल है बस एक ही बार उतरना, थोड़ा थोड़ा ही चाहे उतरे, लेकिन ततनज़्ज़ुल उतरते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। कब? जब भी ज़रूरत आती है, जब भी परेशानी आती है, जब भी हक़ के रास्ते में कोई चोट पड़ती है, तो वो उतरते ही रहते हैं। ग़ज़वे बदर के मौके पे तो फरिश्ते उतरे थे ना, क्या कहा था उनको कि जमा दो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हर दौर में लाते हैं। देखिए सूरह शोरा में हमने पढ़ा कि शैतान भी उतरते हैं किन पे, अला कुल्ली अफ़ा के नसीम, झूठे बातें बनाने वाले गुनाहगार पे। तो झूठों पे शैतान उतरते हैं, वो उनको गलत आइडिया सिखाते हैं। ईमान वालों पर फरिश्ते उतरते हैं, नेकी के मौके दिखाते हैं, जमाओं के लिए उतारते हैं। दो लफ्ज़ हैं यहाँ, एक है हुज़न और एक है खौफ। खौफ हमेशा मुस्तकबिल का होता है, आइंदा मेरा क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊँगी, शोहर साथ नहीं दे रहे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लगता है कि फ़र्क पड़ता ही जा रहा है। पिछली आयतों में भी हमने बात की थी ना इस पे कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ चलते हैं, सब छोड़ देंगे, ये अंदेशे आते हैं। बस औरतों को तन्हा हिजरत करनी पड़ती है, कोई साथ नहीं। आप ज़रा पढ़ के तो देखें हिजरत का दौर। उम्मे सलमा हिजरत करके निकली, कैसे रोक ली गई, अल्लाह के नबी की बेटी हिजरत के लिए निकली, रोक ली गई। और जब बंदे के इर्द गिर्द वाले नेकियों में उसका हौसला तोड़े ना, उस वक़्त ये तन्हाई ये हिजरत और मुश्किल हो जाती है। ऐसे वक्त में जो चीज़ बंदे को ठोकती है, रब्बुन अल्लाह, मेरा रब एक है। हर मुखालफत खौफ पैदा करती है। जब लोग तनकीद करते बातें बनाते हैं ना, तो दुख भी होता है, खौफ भी आता है। ऐसे में फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफ़ु वला तहज़नु और अबशिरू बशर से बशारत, ऐसी खबर जिसका असर चेहरे पे आए, पुरसकून रहते हैं। कब? एक तो ज़िंदगी भर, कभी पैनिक नहीं होते, खरियोस बरपा नहीं होता। हमारा तो दूध उबलने लगे तो हम चीख मारते हैं ऐसी के दूसरे सोचे पता नहीं क्या हो गया। कभी भी अपने एक्शंस के साथ दूसरे का दिल ना दहलाएं। और मौत के वक्त तो ये फरिश्ते आके पुकार लगाते हैं, क्या? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिकि रादियतम मर्दिया, सूरत फजर की आखिरी आयतें। फरिश्ते आके कहते हैं कि ए इत्मीनान वाली रूह, चल तेरे रब की तरफ इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तुझसे राजी है। और क्या चाहिए, बंदे को मोहब्बत हो जाती है ना जिससे वो उसके पास जाने को तैयार है। देखिए शादी से पहले अगर ज़रा निस्बत जुड़ी हो, किसी दिल लगा हो ना, तो लड़कियों के लिए दिन गुजरने मुश्किल होते हैं, कब जाएं और उस घर में रहें जहाँ की हमारा मुंतज़िर है। छोटी मोहब्बत चले सच्ची भी हो जाएगी बाद में, लेकिन जिसको अल्लाह से मोहब्बत है उसका दिल लग सकता है इस दुनिया में। जिसको जन्नत दिख रही है, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, क्या चाहिए आपको। देखिए ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आप बाज़ार गई, आपने एक चीज़ देखी, आप कहते हैं बहुत अच्छी है, कीमत दे के आगे चले गए, आपको आज याद भी नहीं होगा, क़यामत के दिन जन्नत में वो सारी चीज़ें फेंक पड़ी होंगी कि ये मेरे बंदे का कभी दिल चाहा था, फरिश्तों ये रोक लो, यकीन करें। कोई सोने का सेट, कोई कपड़ा, कोई जेवर, कोई जूती, जो औरतों की कुर्बानियाँ होती हैं या जो उनके वीक पॉइंट्स होते हैं, आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैंने क्या करना है इसको उधर कर दें, मैंने क्या करना है इसको उधर कर दें। बस दफ़ा बंदे की ख्वाहिशात इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, एक ज़िंदगी क्या दूसरी ज़िंदगी भी मिल जाए तो पूरी नहीं होगी। का गम ना करो, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही, तश्तही में इश्तहा है ना, और आगे फिर है मा तद्दऊन, दो चीज़ें हैं, एक वो है जो तुम्हें बिन कहे बगैर दे दी जाएगी, और ये सब कैसे होगा, नुज़ुलम बिन गफूर रहीम। पहला खाना जो मेहमान को खिलाते हैं ना, उसको नुज़ुल कहते हैं, और आप सब जानते हैं हर बंदा अपनी हैसियत से चार गुना बढ़ के करता है कि पहला खाना, और जब कोई पहली बार आ रहा हो, और आप ही वो रहो जिसकी इतनी तलब है, दिल चाहता है कि हर चीज़ बना के रख दो, अल्लाह पहला खाना भी खुद खिला रहा है, हम खिलाएंगे ये गफूर रहीम। दो लफ्ज़ क्यों आए यहाँ, देखिए जब खिलाने की बात थी तो आना क्या है चाहिए था, अर रज़ाक या अल कवी या अल मुकीत, कुव्वत देने वाला, गफूर और रहीम क्यों आया, वजह समझ आ रही है कि पहले गुनाह माफ़ करके अपनी रहमतों से तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारा तो कोई अमल इस काबिल नहीं था कि तुम्हें जन्नत मिलती, लेकिन अगर मैं अल गफूर और अर रहीम ना होता तो वाकई यही था, मैंने माफ़ कर दिए, मैंने पैसे डाल दिए उसमें अपनी तरफ से, तुम्हारे अमल कम थे, मैंने अपनी तरफ से फरिश्तों से कहा कि ले जाओ और इनको दे दो। दुनिया की दोस्तियां याद आती, किसी ने कहा चंद दिन पहले, मुझे तो अब अपने सारे ही छोड़ गए हैं, तो अब दूसरों को अपना बना ले। देखिए एक छुटता है तो दूसरा अपना बन जाता है, वो भी सारे आ जाएंगे वापस। आप इस्तकामत के दर्जे पे चले जाएं। मक्का वालों को दीन कुर्बानी की कीमत पे मिला था, अल्लाह ने उनको फरिश्तों की खुशखबरियाँ दे दी। आज भी जो बंदा दीन की वजह से अकेला है, उसके लिए ये बातें। एक वो है जो मजहबी घराने से उठ के आ रहा है, एक वो है जो गैर मजहबी घराने से उठ के आ रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारी खुशखबरियाँ उनको मिलती हैं जो दीन के लिए कुर्बानियाँ करते हैं। जिहाद, अटमोस्ट कोशिश, मनाए प्यार से, आजमाइश से, क्या हुआ मैं गिव अप कर दूँ, मैं अपना अजर कम कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ। और आपको पता है कैसे लोग जब कब्र से निकलेंगे ना, तो रिवायात में आता है कि फरिश्ते इस तकवाल के लिए खड़े होंगे, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे दुल्हन आती है ना तो उसके लिए फूल लेके लोग खड़े होते हैं। फिर पुल सरात पर ये फरिश्ते होंगे, मैदाने मक्शर में ये फरिश्ते होंगे, और जन्नत में भी सुबह शाम को आके सलाम कहेंगे, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, दाखिल होंगे उन पर हर दरवाजे में से। आज दुनिया में आप देखिए कि बहुत सारी खराबियां जो है ना, ये ख्वाहिशात की वजह से पैदा होती है ना। आप देखें तो असल इस वक्त तो लस्ट ही है ना हर तरफ गई हुई। कुछ ख्वाहिशात नेक भी होती हैं लेकिन दुनिया में पूरी नहीं होती। मसलन किसी को बेटे की ख्वाहिशें नहीं मिला तो क्या हुआ, वलकुम फ़ी हमा तश्तही अनफुसुकुम। रिवायात में आता है कि एक शख्स है, उसका दिल चाहेगा, मैं एक दो वाक़यात आपको सुनाती हूँ इसमें से, कि वहाँ इश्तहा कैसे होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में किसी परिंदे को उड़ता हुआ देखकर तुम्हारे दिल में इसका गोश्त खाने की ख्वाहिश पैदा होगी, तो वो उसी वक्त भुना भनाया तुम्हारे सामने आ गिरेगा। और एक रिवायत में आता है कि वो ना आग से मस होगा ना धुएं से, खुद ब खुद पक के आ जाएगा। ये बहकी की और बज़ार और मसहरी की रिवायत है इब्ने मसूद से। एक और रिवायत है कि मोमिन को जन्नत में अगर अपने घर में बच्चा पैदा होने की ख्वाहिश होगी, तो इसका हमल और वज़ह हमल, फिर इसका दूध छुड़ाना, और फिर जो इन जवान होना, सब एक साथ में हो जाएगा एक घड़ी में। तिरमिज़ी की रिवायत है, बहकी की भी है। तो देख लीजिए अल्लाह रखता कुछ नहीं है, करना क्या है इसको पाने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दें, कॉलर बन जाए उसके घर की तरफ बुलाने के।